वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन पॉडकास्ट के साथ बहजत चलानी। पल पल बदलती दुनिया, कल से आज और तब से अब तक के सफर का अहवाल। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से पॉडकास्ट का एक नया सिलसिला। इस सफर में हमारे हमराह रहिएगा। आज पाकिस्तान के कल्चरल मंजरनामे फिल्म, टेलीविजन एक्टर, दानिश्वर, पब्लिक स्पीकर, कॉलम निगार, टीचर और ड्रामा नवीस नईम ताहिर से एक दिलचस्प मुकालमा पेश कर रहे हैं। फिल्म हो, ड्रामा हो, या पाकिस्तान का कल्चरल सीन, या फिर रिसर्च और तहकीकी काम, इतने मुख्तलिफ शोबों का इहाता करने वाले नईम ताहिर इस वक्त हमारे साथ हैं। और गुफ्तगू का आगाज किस तरह करूं, ये एक मुश्किल मरहला है मेरे लिए। चलिए ऐसा करते हैं, नईम ताहिर से ही एक सवाल करते हुए बात का आगाज करते हैं। पहले तो रिवायती बात कि आपके वक्त का शुक्रिया और पॉडकास्ट कल और आज में आपका खैर मकदम। नईम साहब, आपका तारुफ कराने की तो कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि बहुत से शोबे आपकी भरपूर पहचान है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप खुद को मुतारिफ कराएं, तो अपने बारे में क्या कहेंगे? आपके नजदीक या आपके दिल के करीब ऐसा कौन सा काम है जिसे आप अपनी शनाख्त के तौर पर बयान करना चाहेंगे?
पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस बात पे कि आपने एक ऐसे मौजू पे बात करनी शुरू की है। वो मौजू इंतहाई अहम है, लेकिन हम जिंदगी के हमाहमी में उसको नजरअंदाज कर जाते हैं, और जब नजरअंदाज कर जाते हैं तो हमारा अपना ही नुकसान होता है। आंखें खोल के जीना बेहतर है बजाय आंखें बंद करके जीने के। तो आपने इस मौजू को, गुजरते वक्त के बारे में सोच को जो आपने बढ़ाया है, मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा सिलसिला है। अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे और सारे लोग आपके साथ तावुन करें। बाकी जहां तक मेरी पहचान का है, मैं अब तक बुल्ले की इसी बात पे फंसा हुआ हूँ कि जाना मैं कौन।
बहुत <खुँ।
laughs> मैंने बहुत कोशिश की कि अपने आप को पहचान सकूं। मैंने वो किया जो मेरा जी चाहा, मैंने वो बहुत कम किया जो मसलहत ने मुझे समझाया। मैं जब से मैंने होश संभाला है, मुझे आर्ट और कल्चर में दिलचस्प पैदा हो। मेरे वालिदैन चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। मेरी वालदा बरसगीर की पहली खातून डॉक्टर थी। मेरे वालिद उस जमाने के बहुत आलिम और इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स भी थे। कुछ लोग इंजीनियर बन रहे थे, कुछ लोग डॉक्टर बन रहे थे। लेकिन मैं इस चीज का गुनाहगार जरूर हूं कि मैंने उनकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस जुनून में, और वो आर्ट्स और कल्चर का जुनून था, मैं चाहता था कि इस मुल्क में जितने लोग फनून लतीफा से मुतल्लिक हैं, बिलखुसूस ड्रामे और अदाकारी से, वो इस काबिल हो जाएं, उनके लिए ऐसे मौके मुयसर हो जाएं कि वो एक बाइज्जत जिंदगी गुजार सके। इसलिए नहीं था कि माशरे में भी फनून लतीफा और खासतौर पर अदाकारों और एक्टरों और अदाकाराओं के बारे में कुछ रवैये बहुत मनफी किस्म के थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जिद्दोजहद में मुझे अल्लाह ताला ने काफी कामयाब किया और मुझे कई ऐसे लैंडमार्क हैं जिनको मैं फखर से जिनका तस्करा कर सकता। तो ये मेरी पहचान है, अगर बनती है लीजिए।
बहुत खूब। साल 2022, अब जिस वक्त आपसे मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तान अपने क्याम के 75 साल पूरे कर रहा है। इन बरसों में पाकिस्तान ने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे, सियासी मंजरनामे से सकाफती मंजरनामे तक कई दुश्वार रास्ते सामने आए। पाकिस्तान के लोगों ने हर मुश्किल का मुकाबला पूरी जानफिशानी से भी किया। आपसे मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू कल्चर है, और कल्चर किसी भी मुल्क और वहां के लोगों की एक बड़ी पहचान होता है। पाकिस्तान एक मुतनव्वे और रंगारंग सकाफत का गहवारा है, जिसके लिए आपके खिदमात बेशुमार हैं। पाकिस्तान के कल्चर की मुख्तसर वजाहत आप कैसे करेंगे?
बेजत, ये कल्चर एक इतना वसी मौजू है कि इसको मुख्तसर करते करते भी तवील हो जाता है। लेकिन चूंकि आप चाहती हैं कि आपके वक्त की कीमत का एहसास किया जाए, तो मैंने आपकी शायद एक नज़र से गुजरी हो कि मैंने इस खित्ते की सरजमीन की तारीखी और सकाफती जिंदगी के कबल अज़ मसीह 5000 साल तक की तारीख 7 साल रिसर्च करके कलम बंद की है और उस किताब का नाम है मलूहा। तो उसमें मैंने ये सारा सफर तय किया है अपनी ही शनाख्त करने के लिए। अब अगर मोटी मोटी चीजें जो आम तौर पे महसूस की जाती हैं, उनमें मैं एक बात ये कहूंगा कि हमारे यहाँ जो वक्त के साथ नुकसान हुआ है, वो एहसास का नुकसान हुआ है कि हमने अपनी तारीख की, अपनी रिवायत की जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, उनको नजरअंदाज कर दिया। सबसे बड़ी कुर्बानी जो है वो जुबान की होती है, क्योंकि जुबान नुमाइंदा होती है आपके सकाफती रिवायत की। तो आप यहाँ एक मिसाल देता हूँ जो कि मुझे बहुत ही तकलीफ दे मिसाल है। एक बहुत बड़े यहाँ के मशहूर स्कूल में लिखा हुआ था, यहाँ पर उर्दू बोलना सख्ती से मना है। अब ये देखिए कि हम लोग जो 1947 में होश में आ गए थे और इस मुल्क की बका और तारीख के लिए अपनी जानें दे रहे थे, उन लोगों ने जो विरसे में पाई थी दफ्तरी जुबान या बोलचाल की जुबान जो थी वो उर्दू थी। ये जरूरत है कि अपनी इलाकाई जुबानें बहुत रिच है, बहुत उनमें बहुत कुछ है, पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो है, ये सब जुबानें अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक मुश्तरक जुबान उर्दू के तौर पे सबके लिए काबिल कबूल थी। और अब मैं आज 2022 में जब ये बोर्ड लगा हुआ देखता हूँ कि स्कूल में कि यहाँ उर्दू जुबान में बात करना मना है, आप मुझे बताइए मेरे दिल पे क्या गुजरती हो। हमने सबसे ज्यादा नुकसान जो किया है अपनी रिवायत का किया है। हमारी रिवायत में बेहद खुलूस, मेहमान नवाजी, प्यार, मोहब्बत, गुफ्तगु का अंदाज अच्छा, ये सारी चीजें थी। मैं मानता हूं कि वक्त के दबाव के तहत और सियासी तब्दीलियों में इन रवैयों में तब्दीली आ सकती है, वो आनी भी चाहिए क्योंकि जमाना बदलता है, साइंस भी तरक्की करती है और मेडिसिन भी तरक्की कर रही है, इस तरह से इन चीजों को कबूल तो करना चाहिए। लेकिन इंसानी रवैये, अखलाक, तहजीब, इसको हद दर्जा बरकरार रखने की जरूरत है। तो मैंने ये महसूस किया है कि आर्ट एंड कल्चर को बिल्कुल, जब तहजीबी को आप नजरअंदाज कर दें तो आर्ट एंड कल्चर भी उसी का हिस्सा है। मैंने इसी कोशिश में, आपको ये मालूम है कि बहुत शुरू में ही मैंने कॉलेज के जमाने में ही अपना रुख मुतय्यन हो गया था। मेरा इब्तिदा यूं ही कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था और हमने वहां तहरीक चलाई कि उर्दू का ड्रामा होना चाहिए कॉलेज के लिए, जो एनुअल ड्रामा होता है जिसमें सारे बड़े फख्र से दुनिया को बुलाया जाता है, और गवर्नमेंट कॉलेज का ड्रामा बड़ा मशहूर था। तो मैं अपने तालीम के, जब मैं MA के फाइनल ईयर में था, उस वक्त हम लोगों की, हम 4-5 लड़के थे जो इस फाइनल ड्रामा गवर्नमेंट कॉलेज का कामयाब हो गई, तो प्रोफेसर सिराजुद्दीन प्रिंसिपल ने कहा कि ड्रामे का एक स्क्रिप्ट होना चाहिए। वो स्क्रिप्ट हमारा बहुत जल्दी में सैयद जफर संदानी ने मोलियर के ड्रामे से बना दिया, लेकिन प्रोफेसर साहब सिराजुद्दीन साहब ने कहा कि मैं इस स्क्रिप्ट को उस वक्त कबूल करूंगा जब इसको सैयद इम्तियाज अली ताज साहब देख लें और ये ठीक मालूम। यूं मुझे सैयद इम्तियाज अली ताज साहब के पास, और ये मेरी जिंदगी की बहुत एक अहम बात थी कि मैंने फिर उनकी शख्सियत से बहुत कुछ सीखा, ड्रामा भी सीखा, ड्रामे के बारे में पढ़ा लिखा। जो मेरा एक जुनून था उसको आप एक मुताले के सहारे से और एक अच्छे उस्ताद के सहारे से उसमें एक तरतीब आ गई। मेरी शादी हो गई यास्मीन से, वो भी ड्रामे की शौकीन थी। उसके बाद फिर मुझे रॉकफेलर फाउंडेशन से एक ऐसा फेलोशिप में गया जो 4 साल में एक एशियन को दिया जाता था, और मैंने खुशकिस्मती से मुझे और यास्मीन दोनों को दे दिया थिएटर आर्ट्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से मास्टर्स किया। उसके बाद आके मैं जमाने में ड्रामे का इंचार्ज था, फैज साहब ने आर्ट्स काउंसिल को टेक ओवर कर लिया हुआ था और मुझे उन्होंने ड्रामे का इंचार्ज रखा। अब जो मैंने तहरीक चलाई उसमें ये था कि ड्रामा जब तक ओरिजिनल नहीं लिखा जाएगा उस वक्त तक पाकिस्तान में ड्रामे की तरवीज नहीं होगी, सिर्फ अडेप्टिंग। तो मैंने मशवरा दिया बोर्ड को कि आप ड्रामा लिखने वाले को, और आप जानती हैं आपने रेडियो में काम किया है कि ड्रामा लिखने वाले को सबसे ज्यादा पैसा रेडियो ही देता था और वो 200 रुपए दे रहा था ड्रामा लिखने। मैंने ये अप्रूव करवाया कि 2000 रुपया स्टेज का ड्रामा लिखने के लिए दिया जाए, साथ गारंटी दी जाए कि ड्रामा स्टेज होगा, लोगों को दिखाया जाएगा और लिखने वाले की शोहरत भी होगी, उसे पैसे। ये एक बड़ा मेजर कदम। इसकी वजह से भी बानो कुलसिया, इशफाक अहमद, इंतजार हुसैन, बहुत से लोग स्टेज के ड्रामे लिखे, ओरिजिनल ड्रामे की तहरीक वो आगे चल पड़ी। मुख्तसर ये है कि उसके बाद ये हुआ कि फैज साहब अलील हो गए, उनकी जगह पे मुझे मुकर्रर कर दिया गया आर्ट्स काउंसिल। तो मैंने आर्ट्स काउंसिल की एक मुकम्मल बिल्डिंग बनाने का फैसला, जो आज अलहमरा हॉल पर, और अल्लाह ताला ने मेरी मदद की कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल मेगा।
जब आपने पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के हवाले से, आपका नाम हमेशा बड़ी सुर्खियों में रहा है, पाकिस्तान काउंसिल फॉर नेशनल इंटीग्रेशन लाहौर सेंटर के डायरेक्टर के मनसब से जब आपने शुरू किया तो मुतअद्दिद आला और कुलेदी मनसब संभाले थे, ये फरमाइएगा कि ऐसा कौन सा काम था जो आपने करना चाहा लेकिन नहीं कर पाए?
अच्छा, पहले तो मैं बेइज्जत ये बताऊं कि अलहमरा पाकिस्तान काउंसिल आर्ट्स काउंसिल
जी
अलहदा है, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स
जी, बिल्कुल आई अंडरस्टैंड।
बेइज्जत, ये आपका बड़ा अहम सवाल है, जहां आदमी बहुत से ख्वाहिशात पूरी करने के लिए निकलता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह के आर्ट्स काउंसिल को जब अलहमरा को टेक ओवर किया तो उस वक्त उसका बहुत बुरा हाल इस लिहाज से था कि उस पर कब्जे हुए हुए थे जमीनों पे, वो सब मैंने छुड़वाए। मैं मुख्तसर कहता हूँ, लंबी कहानी है। जमीन को मैंने पैसे खुद जमा करके खरीदा, ये 4 एकड़ जमीन जो अलहमरा, ये मैंने पैसे जमा करके खरीदी, और खरीदने के बाद मैंने इस पे पूरा प्रोजेक्ट बनवाया, और इसकी बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने अयूब खान साहब के एक और दौरे में उनका ट्रेस पास करके उनसे दरख्वास्त करके मैंने कहा कि जनाब इसके लिए पैसे दीजिए, वो अच्छे थे आदमी थे, तस्वीर भी मेरे पास मौजूद है, उन्होंने उसके लिए ग्रांट सेंक्शन कर दी। अब ग्रांट सेंक्शन कर दी, जब पैसे आ गए तो बेइज्जत जैसे यहाँ हमारे मुल्क में होता है मुझे अलहमरा से फारिग कर दिया गया। उन्होंने कहा जब सिविल सर्विस जो है वो इसको संभाल लेगी।
आप खुद रिवायत की बात करते हैं तो रिवायत परस्ती, रिवायत पसंदी, तो फिर देखे ना उसका कोई ना कोई सिलसिला तो नजर आता है
ना, तो मुझे फारिग कर दिया गया। लेकिन इससे पहले मुझे अयूब खान साहब ने एक और जिम्मेदारी दी थी जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुकम्मल की, कि चाइना से सकाफती बुनियाद पर तल्लुकात पैदा किए जाए। जाहिर है कि चाइना के दरमियान हमारे यहाँ को मजहबी कॉन्टेक्ट तो नहीं था, ये तो एक मजहबी के बजाय एक सकाफती बुनियाद पे हो सकती है। इदारा अपनी जगह पे कायम रहा, गवर्नर साहब बदल गए, जनरल जिलानी आ गए, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि मैं आपसे एग्री करता हूँ, जो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, आप इस बिल्डिंग को मुकम्मल करके दिखाइए। मेरे लिए तो कुछ मुश्किल नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको 6 महीने में उस इमारत को मुकम्मल करके उसका इफ्तिताह किया। और मेरी ख्वाहिश थी कि ये थिएटर हॉल जो है पाकिस्तान का सबसे अहम मरकजी थिएटर हॉल के तौर पर रहे, और मैंने तजर्बे के तौर पर 6 महीने इसको चला के उनको दिखा दिया कि हम मुस्तकिल ड्रामे हो सकते हैं, अच्छे से अच्छा एक्टर भी। आज जो हमारे बड़े मशहूर एक्टर हैं लाहौर के, वो उसमें आते रहे, ड्रामे लिखे जाते रहे, और चला 6 महीने के बाद मेरी टर्म जो थी वो उस वक्त तक मुकम्मल हो चुकी थी। तो मैंने कहा किसी और को संभालना चाहिए, बस उसके बाद से वो बेशतर बंदी पड़ा रहता है, मुझे इस बात का अफसोस है।
जी, ड्रामे की बात हुई है तो बड़ा दिलचस्प एक उन्मान है आपकी तस्नीफ का, ये जलसा उर्दू ड्रामे का, फिर उर्दू ही ड्रामे के हवाले से एक और तस्नीफ थी आपकी सहले रवां भी। तो अब ये बताइए कि कल से आज तक ड्रामे का सफर आपकी नजर में कैसा रहा? आपने ड्रामे लिखे, आपने ड्रामे प्रोड्यूस किए, आपने ड्रामों में काम किया, तो ये सारा सफर जो कल से आज तक का ये सफर है, इसको कैसे देखते हैं?
बेइज्जत, आप मुझे एक जासूस मालूम होती हैं, आपको कैसे मालूम है कि मैंने ये ड्रामे लिखे हुए? जलसा उर्दू ड्रामे का तो एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग तजुर्बा है।
बिल्कुल, वो मुझे बहुत जी मुझे बहुत ये दिलचस्प लगी ये चीज, मैंने कहा ये जरूर सुनने वालों को बताएं, क्योंकि जिसे कहना चाहिए ड्रामों के हवाले से जो सामने नजर आ जाता है उसको तो बहुत सारे हमारे लोग जानते हैं, लेकिन जो नजर नहीं आता और आपने क्या क्या किया है, तो ये जो ड्रामे का सफर है कल से आज तक का, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए हमारे सुनने वालों को।
پہلے تو میں آپ کے سوال کا جلسہ اردو ڈرامہ کیا چیز، جلسہ ایک قدیم لفظ ہے جو واجد علی شاہ کے زمانے میں ڈرامے کے لیے استعمال ہوتا تھا. لفظ ڈرامہ انگریزی کا لفظ ہے. اس سے پہلے جب انگریزی کا ہمارے پاس اثر و رسوخ نہیں ہوا تھا تو ڈرامے کو جلسہ کہا جاتا تھا کہ آج جلسہ ہوگا، محل میں جلسہ ہوگا، آج یہ ہوگا، وہ ڈرامہ ہوگا.
یہ مجھے معلوم نہیں تھا. بہت خوب. اچھا
ہم بہت لوگوں کو نہیں معلوم تھا. تو جب یہاں ایک اردو کانفرنس ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اردو کانفرنس میں ایک ڈرامہ کر دیجئے. تو میں نے یہ سوچا کہ اردو کانفرنس ہے تو اردو کانفرنس میں تو ڈرامے کا ڈرامہ بتانا چاہیے کہ کیا ہے. تو میں نے اس کا نام لکھا جلسہ اردو ڈرامے کا. اور میں نے ڈرامے کی تاریخ یعنی اندر سبھا سے لے کے آج کی فلم اور ڈرامے کے قربت کے حساب تک سب ڈرامے میں جو مستقل اور مشکل اور مختلف دور آئے ہیں، جس میں بلند آوازی کا دور تھا، کبھی بہت زیادہ گلیمر کا دور تھا، یہ سارے ادوار کی میں نے جھلکیاں پیش کی ہیں جلسہ اردو ڈرامے میں. تو جلسہ اردو ڈرامے کا ڈرامے میں ڈرامے کی تاریخ ہے. سیر رواں ایک مختلف چیز ہے. وہ یوں ہے کہ مجھ سے کہا گیا کہ 14 اگست کو ایک ڈرامہ اسٹیج ہونا چاہیے خاص. تو میں نے سوچا 14 اگست تو ہماری آزادی کا دن ہے، تو میں کیوں نہ آزادی کی تاریخ جو ہے وہ ڈرامے میں پیش کر دوں. تو سیر رواں اس تحریک پہ ایک ڈرامہ بنایا ہے جو یوں سمجھیے کہ 1609 عیسوی سے شروع ہوتی ہے، جس دن جہانگیر نے بادشاہت کا اٹھایا تھا ذمہ داری. تو یہ سارا سفر جو ہے یہ میں نے سیر رواں میں لکھا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے پھر دوبارہ آزادی کا سفر جو ہے وہ دوسرا اس کا ایکٹ.
ڈرامے کی بات ہو رہی ہے تو ڈرامے کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق رہا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا آپ نے تحریر بھی کیے، آپ نے ڈراموں میں کام بھی کیا، آپ نے ڈراموں کو پروڈیوس بھی کیا، ڈائریکٹ بھی کیا. تو یہ ڈرامے کا سفر کیسا ہے آپ کی نظر میں، کل سے لے کر آج تک کا، جتنے کوئی اشروں پہ محیط ہے آپ کا یہ سفر، اس کے حوالے سے کچھ بات بتائیے. ہمارے آج کا ڈرامہ کہاں کھڑا ہے، کل کہاں سے شروع ہوا اور کس طرح سے یہاں تک پہنچا؟
بہجت اس میں جہاں تک مقصد یہ تھا کہ ڈرامے میں حصہ لینے والے فرد کو باعزت بنایا جائے اور وہ اپنی روزی عزت سے کما سکے، اس میں تو کافی بہتری واقع ہوئی. میں عرض کر رہا تھا کہ ڈرامے کی اب کئی فارمز ہیں، کئی طریقے سے ذریعہ اظہار استعمال ہو رہا ہے بدلتے زمانے کی روایات کے مطابق. اب ٹیلی ویژن بھی ہے، اسٹیج بھی ہے، یوٹیوب بھی ہے، بہت سے کئی چیزیں ایسی آ گئی ہیں، تو انٹرنیٹ بھی ہے. تو اب ڈرامے کے اداکار کو باعزت ہونا اس کے اپنے کردار کی بات ہے اور اپنے کمال کی بات. مواقع موجود ہیں. اگر اس کی فارم اسٹیج کو دیکھا جائے تو اسٹیج پہ کام کم ہوتا ہے، اور اسٹیج پہ عام طور پر وہ عوامی ڈرامہ ہو رہا ہے جو عوامی نقطۂ نظر سے زیادہ تفریح کا موجب بنتا ہے، اور صرف الحمرہ کا ہال نہیں رہ گیا اور بہت سے لوگوں نے ہال بنا لیے. پاکستان میں جو میں نے میں سمجھتا ہوں جس میں مجھے بڑا فخر ہے، وہ میں نے نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس اسلام آباد میں اس کا پورا کمپلیکس بنایا، جس میں 24 آرٹ گیلریاں ہیں، اور میں نے اس میں ایک تھیٹر ہال بھی بنایا ہوا ہے. تو چنانچہ وہاں بھی تھیٹر فیسٹیول ہم کرتے رہے اور آباد میں بھی ہوتے ہیں. تو تھیٹر کافی حد تک زندہ ہوا ہے، اور اس کی دوسری فارم ٹیلی ویژن تو ایک مستقل فارم ہے ہی. فلم یہاں زیادہ ابھی نہیں بن رہی، لیکن آہستہ آہستہ میں خانہ بننے لگ جائے گی. لیکن جو نئی فارمز ہیں نا، جس میں ویڈیو ہے اور یوٹیوب پہ ہے، یہ نئے رستے کھل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈرامے نے کافی، اور ڈرامہ لکھنے والوں میں اور ڈرامہ ایکٹ کرنے والوں میں، ڈائریکٹر میں کافی بہتری کی صورت پیدا ہوئی ہے. اور میں اپنی زندگی میں جتنی امید رکھ سکتا تھا، میرا خیال یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ ندیدہ نہیں ہونا چاہیے، کسی حد تک مجھے اس میں شک بھی ہے کہ میں کہیں نہ کہیں اس میں میرا رول اچھا مثبت رہا ہے.
अच्छा ये बताइएगा कि आज का जो फनकार है, ड्रामे का, फिल्म का या थिएटर का, बल्कि मैंने देखा है कि बहुत सारे अब तो ये होता है कि ड्रामे के लोग फिल्म में भी जाते हैं, थिएटर में भी काम करते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे आज इन शोबों में काम करने वालों से? आपके पास एक बरसों का तजुर्बा है, क्या कमी देखते हैं जो इन फनकारों को दूर करने की जरूरत है, या क्या चीज है जिसके जरिए वो मजीद बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकते हैं?
ये बहुत मुश्किल सवाल है भाई, लेकिन मैं मुख्तसर ये कहूंगा कि अगर आप इस फन से मुतालिक हो गए तो इसकी रवायात का भी मुताला कीजिए, इसके सोशल रोल का भी मुताला कीजिए, और पैगाम रसानी की अहमियत जो इस फन से है उसका भी एहसास कीजिए। आप जब स्टेज पे जाते हैं या किसी जरिए इजहार में हिस्सा लेते हैं तो आपकी समाजी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है। समाजी जिम्मेदारी में आपको रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट देनी चाहिए। इसका मिसयूज ना करें, और अगर कोई करे तो कोशिश करें कि उसका हाथ पूरा रोकें। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी रिवायात का मुताला करें और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। अल्लाह रोजी देता ही है, अगर आप और से खुलूस से काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी भी होगी और आप समाजी जिम्मेदारी को भी पूरा कर सकेंगे।
अच्छा एक बात और कि पाकिस्तान के इस 75 साल सफर के बारे में आप कैसे सोचते हैं, क्या कुछ अच्छा रहा और ऐसा क्या रहा जिसे करने की जरूरत तो थी लेकिन दाखिली हो, इलाकाई हो या बैन अल-अक़वामी तनाजर में वो किया ना जा सका, किस तरह से आप इसको देखते हैं?
या अल्लाह बेजत, ये इस सवाल के जवाब के लिए 75 साल के लिए कम से कम 75 घंटे तो चाहिए, कम से कम 75 मिनट तो
That's true, बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं, आपसे बात करने के लिए भी बहुत सारे घंटों की जरूरत है, और क्योंकि मैंने जो कुछ सोचा और जो कुछ लिखा, लेकिन इसी वजह से, क्योंकि अगर मैं आपके काम पे एक एक करके बात करने लगूं तो बिलीव मी कि फिर तो कई दिन चाहिए इस इंटरव्यू को करने के लिए, तो इसी वजह से मैंने शुरू में ही ये कहा कि आप मुझे बताइए कि कौन सी चीजें आप खुद चुन के ताकि उसके ऊपर बात कर लें और बात इस तरह आगे बढ़ जाए।
मैं तो 1937 में पैदा हुआ था, लिहाजा मैंने बहुत से अखबार देखे हैं। 1947 में जो जज्बा था वो ऐसा था कि मुल्क को बनाना है, मुल्क को बेहतर से बेहतर करना है। उसके बाद उसमें एक एलिमेंट आ गया लालच का, जिसमें कुछ लोगों ने अलॉटमेंट्स और फायदा उठाने की शॉर्टकट्स ढूंढने शुरू कर दी। उससे सोसाइटी में बहुत सा बिगाड़ आया, बहुत सी लालच पैदा हो गई, और ऐसा ऐसा मैं समझता हूँ कि सोसाइटी में एक रवैया पैसे की अहमियत का बहुत ज्यादा हो, इसमें वो तवाजुन नहीं रहा जो अखलाकियात और अपनी रिवायात और अपने किरदार के लिए और अपने जज्बाए हुबुल वतनी के लिए चाहिए होता है, वो कुछ लोगों में इसका तवाजुन बरकरार नहीं रहा, वो सिर्फ पैसे की लालच में चल पड़ा। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ कि जिसमें इसमें फर्क आया वो ये आया कि हमने एक ज़हनी गुलामी अंग्रेजी की शुरू कर दी। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जगह लिखा हुआ था कि इस स्कूल में उर्दू बोलना मना है, तो जुबान तो आपकी रिवायत जो है उसकी अमीन होती थी जाइए कि हम लोग अंग्रेजी के ना अंग्रेज बन सके और ना हम पाकिस्तानी रहे। अब बीच में कहीं आ गए हैं और बहुत सा एक तबका है जो पैसे की लालच में, अब बहुत ही हाल में ये एहसास लोगों में पैदा होना शुरू हुआ है कि हम अपनी रिवायत और अपनी तारीख को खो के गुलाम बनते जा रहे हैं। अब ये एहसास थोड़ा सा पैदा होना शुरू हुआ है, और खुदा करे कि इस एहसास में कामयाबी हो और हम अपनी शख्सियत, कौमी शख्सियत, अपनी मिनहसुल कौम, अपनी शख्सियत को पहचान सकें, उस पर फख्र कर सकें और उसको आगे बढ़ा सकें।
अच्छा आखिरी सवाल अब मेरा क्या है, वो ये है कि आपके बेटे, दो बेटे खास तौर से, मतलब तीन बेटे हैं जिनमें से दो बेटे बहुत नुमाया तौर पर आपके नक्शे कदम पर चले, और खास तौर पर फरहान तो यहाँ हॉलीवुड में अपना एक खास मकाम और उन्होंने नाम पैदा किया है, अली पाकिस्तानी ड्रामों के हवाले से बहुत जाने पहचाने नाम है, तो ये सब किस तरह से हुआ? क्या आपको उनकी तरबियत इस तरह से करना पड़ी, या घर का जो माहौल था अदबी? और ज़ाहिर है कि जासमीन ताहिर के वालदैन, आपके वालदैन का नाम बहुत बड़ा है इस सारे मंजरनामे के अंदर, तो क्या तहरीक है आप समझते हैं, देखते हैं कि जो आपके बच्चों ने ली और आगे बढ़े और बड़ी, जिसे कहना चाहिए ना कि बहुत बड़ा नाम कमाया अपने वालदैन की तरह, परवरिश का ज्यादा था, माहौल का ज्यादा था या तरबियत का था?
मैजर ये सभी कुछ था। ठीक है, यास्मीन मेरी एक बड़ी एक मिसाली साथी रही है। हर जगह हम लोगों ने एक तरह से हमारी सोच चली है और हमने बहुत काम किया है। मैंने कभी ये मुनासिब नहीं समझा कि अपने बच्चों के रुझान के खिलाफ उनको कहीं काम करवाया जाए। अब मसलन बहरान ने बर्कले से किया इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट किया, उसके बाद से कहा मैं तो थिएटर में जाना चाहता हूँ, और उसको हार्वर्ड से स्कॉलरशिप मिल गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लेटेस्ट बात मैं फरहान के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हॉलीवुड में तो उसने मकाम पैदा किया था, अब जुलाई के आखिर में वो काइट रनर का जो ब्रॉडवे मेन ब्रॉडवे पे शो हो रहा है उसमें वो लीडिंग रोल कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसकी मेहनत को और उसमें बरकत डाली है और अब वो वहां पे इस वक्त कर रहा है। अली माशाल्लाह बहुत मसरूफ है, वो ज्यादातर पाकिस्तान के टेलीविजन और थिएटर के लिए काम करता है, एक्ट करता है, डायरेक्ट करता है। और मंजला बेटा मेहरान जो है वो समझिए कि इनकी मॉरल सपोर्ट है। उसको अकाउंट्स में दिलचस्पी थी। मैंने किसी के रुझान को रोकने की कोशिश नहीं की। जिसको जहां ज्यादा दिलचस्पी से काम करे ना, अल्लाह ताला वही कामयाबी देता है। जिस काम को आप खुलूस से और दिलचस्पी से करना चाहें उसमें अल्लाह ताला कामयाबी देता है।
बहुत बहुत शुक्रिया नईम ताहिर साहब हमारे साथ थे, और आपसे मेरी ये पहली या आखिरी गुफ्तगू तो नहीं होगी, आपको ये मालूम ही है, क्योंकि कल्चर का और फिर जो आपके शोबे हैं इतने बहुत सारे, उनके वजह से किसी न किसी वक्त आपको जरूर मैं जहमत देती रहूंगी कि आपसे बात हो। किसी वक्त हम कोशिश करेंगे कि आपसे और यास्मीन से दोनों से भी बात कर सकें। तो आज आपके वक्त के लिए खास तौर से बहुत बहुत शुक्रिया। यास्मीन से मेरा बहुत सलाम, बहुत अदाब कहिएगा।
जरूर
जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन पॉडकास्ट के साथ बेहजत चलानी। पल पल बदलती दुनिया, कल से आज और तब से अब तक के सफर का अहवाल। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से पॉडकास्ट का एक नया सिलसिला। इस सफर में हमारे हमराह रहिएगा।